मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। आज 23 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विनोद कुमार यादव, आप चंडीगढ़ से हैं, गिरधारी लाल कुंभकार, आप धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, देव प्रकाश साहू, आप भी धमतरी छत्तीसगढ़ से ही हैं, और कुमारी रीना रे, आप बोकारो झारखंड से हैं। तो विनोद, गिरधारी, देव प्रकाश और कुमारी रीना, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वागत के बाद अब एक थोड़ी सी शोक सूचना है। और शोक सूचना यह है फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना के एक नौजवान स्टूडेंट हमारे यहाँ 5th बैच के रहे हैं, सुखराम चौधरी, उन्होंने सूचित किया है, जो जोधपुर के राजस्थान के रहने वाले हैं, कि उनके दादाजी का निधन हो गया। उन्होंने अपने दादाजी के को बहुत ही भावनात्मकता के साथ याद किया है कि वो कितने ऊर्जावान थे और किस तरीके से गंभीर क्षणों में भी वो सुखराम को, यानी कि अपने पोते को धीरज बंधाया करते थे, उनकी उन्हें ऊर्जा दिया करते थे। तो समझा जा सकता है कि ऐसे दादा का चले जाने का मतलब होता है कि घर के सामने कोई बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष हो और सुबह जब आप अचानक उठकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो वृक्ष वहां से उखड़ चुका है। इतनी छाया जो लगातार गर्मियों में भी हमें उस ताप से बचाती रहती थी, अचानक गायब हो गई है। तो मित्रों, एक बहुत ही एक दुखद घटना होती है, लेकिन प्रकृति का अपना विधान है, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से सुखराम चौधरी के दादाजी की आत्मा के प्रति शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और साथ ही साथ हम सब ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, कल की आपने न्यूज सुनी होगी, रेडियो में भी वो न्यूज थी और दूरदर्शन न्यूज में भी वह न्यूज थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर थी फ्रेंड्स, वो एक ही खबर है, यूं कह लीजिए, वो कंडला बंदरगाह को लेकर है। कंडला बंदरगाह, एक तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि पता नहीं क्यों मैं भी इसे कांडला बंदरगाह ही कहता था। किताबों में भी मैंने बहुत जगह इसको कांडला शब्द ही पढ़ा, इंग्लिश में वो के एन है, लेकिन कल न्यूज में भी मैंने देखा कि दूरदर्शन के न्यूज में भी लगातार कंडला बंदरगाह कहा जा रहा था। प्रधानमंत्री जी भी कंडला बंदरगाह कह रहे थे, और चूंकि प्रधानमंत्री हमारे खुद गुजरात के हैं तो समझा जा सकता है कि उनसे वो गलती नहीं हुई होगी, सवाल ही नहीं है। और आज भी अब पेपर में कंडला बंदरगाह दिया हुआ है, कहीं कहीं कांडला भी दिया हुआ है। खैर, तो ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये कंडला बंदरगाह है। तो जो भी स्टूडेंट कांडला समझ रहे थे, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो उसे करेक्ट कर ले, बेसिकली कंडला बंदरगाह है। न्यूज कुल मिलाकर यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल कंडला बंदरगाह गए और वहां 6 प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, 6 परियोजनाओं का वहां उद्घाटन किया। मित्रों, ठीक है, कंडला बंदरगाह का उद्घाटन, मतलब वो परियोजनाओं का उद्घाटन हो गया जिसमें एक्सपेंशन है और मॉडर्नाइजेशन है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, ये सारी चीजें होंगी, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिविल सर्विस में इस रूप में है कि ये जो एक इवेंट हुआ है, कंडला बंदरगाह के 6 प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन हुआ है, इसके माध्यम से हम अपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए क्या चीजें निकाल सकते हैं। क्या सीधे कंडला बंदरगाह निकलेगा या कुछ और भी निकलेगा? दोस्तों, बस ये एक ऐसी अंतर्दृष्टि है, मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, सबसे ज्यादा इस अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। यानी कि घटना कुछ होती है और सीधे सीधे उस घटना से प्रश्न नहीं आते हैं, उस घटना की जो परिघटनाएं हैं या उनकी पेरीफेरी में, उनकी परिधि में जो दूसरी चीजें घूम रही होती हैं, जो उससे भी ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस की होती है या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होती है, वहां से प्रश्न आते हैं। अब ये बात अलग है कि जब वो परिधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेरिफेरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि ये प्रश्न इंडिपेंडेंट तरीके से पूछा गया है। और जब ये लगता है कि इंडिपेंडेंट तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है, तो फिर लगता है कि इसका मतलब है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, जबकि इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। हमें पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने उस पेरिफेरी को तो देख ही लिया, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन हम उस लिंक को मिस कर जाते हैं जो उस पेरिफेरी को उसके केंद्र से जोड़ता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कंडला बंदरगाह एक 6 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, एक घटना हो गई। अब इसके परिधि में क्या हो सकता है? अब आप देखिए कि परिधि में जब आप सोचेंगे तो फिर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जोर अभी भारत सरकार का इस बात पर है कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, केवल रेल लाइन नहीं है, उसमें एयरपोर्ट ही केवल नहीं है, बल्कि उसमें वाटरवेज भी है, वाटर लाइन भी है। मतलब हमें जो जल मार्ग है, उन जल मार्गों को भी विकसित करना है, और उसी के एक हिस्से के रूप में ये कंडला बंदरगाह के प्रोजेक्ट के उद्घाटन किए गए हैं। फिर हमें ये देखना होगा कि ठीक है, चलिए इनर वाटर लैंड जो है, अंतर्देशीय जो जल मार्ग है, इनलैंड वाटरवेज, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो अब हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या लेकर के चलें? तो देखिए, उसके दो पक्ष होते हैं। तैयारी करने का तरीका मैं एक बता रहा हूं, क्योंकि अब एक मौका मिल गया है। उसके दो पक्ष ये होते हैं कि एक तो हम उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी हासिल कर लें, एक सामान्य सा तथ्य हमें मालूम हो जाए जो हमारे इनर वाटरवेज के बारे में है, इनलैंड वाटरवेज के बारे में। दूसरा यह कि थोड़े से एक्सक्लूसिव चीजें पता लग जाए, बस हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कोई बहुत एक्सपर्टीज वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यानी एक सामान्य जानकारी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रीलिम्स में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो डेफिनेटली चूंकि कंडला बंदरगाह से रिलेटेड ये घटना है, तो हम ये मान करके चले कि प्री में कंडला बंदरगाह से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। हो सकता है कि उसमें इनलैंड वाटरवेज से न आए, है ना, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप का होगा, तो मेंस का ज्यादा हिस्सा बनने की संभावना लगती है। लेकिन प्री में तो कंडला पर पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा सा कंडला के बारे में जान लेना चाहिए। अब होता क्या है फ्रेंड्स, कि अखबार जब आप पढ़ेंगे, चाहे फिर आप एडिटोरियल कमेंट और आर्टिकल ही क्यों ना पढ़े, तो आपको कंडला बंदरगाह के बारे में इंफॉर्मेटरी जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। अखबारों ने तो घटना को लिया और अपने ढंग से उन्होंने बता दिया, उनका काम हो गया, खत्म हो गया। तब फिर आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? और मित्रों, थोड़ा सा वक्त आपको लगाना चाहिए। देखिए, 2-4-5 दिन में कुछ नहीं होता है, एक तैयारी करने का एक लंबा सिलसिला है। जब आप 6 महीने 9 महीने इस तरह की तैयारी करेंगे, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगेगा कि वाकई में आप कितने मजबूत हो गए हैं और चीजों के बारे में कितनी सॉलिड और महत्वपूर्ण जानकारियां अब आपके पास हो गई हैं। इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो न्यूज सुनने के बाद आपको चाहिए कि फिर थोड़ा सा कंडला बंदरगाह को देखें कि क्या है, कैसा है। बहुत ही इंफॉर्मेटरी, मतलब बहुत ही ये कह लीजिए कि सूचनात्मक जानकारी आपको चाहिए, कि दिमाग में एक इंप्रेशन हो जाए। फिर आपको चाहिए कि आप एटलस उठाएं और उसमें कंडला को देखें कि ये कहां है। तब आपको पता लगेगा कि ये जो गुजरात, जो पूरा का पूरा जो वेस्ट कोस्ट है, एक तो पता लग जाएगा आपको कि ये वेस्ट कोस्ट पर है, जो कंडला बंदरगाह है ये वेस्ट कोस्ट पर है। वेस्ट कोस्ट में भी आपको पता लगेगा कि ये अपर साइड में है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा है, है ना। साउथ की तरफ फिर जब आप देखेंगे तो आपको मुंबई पोर्ट दिखाई देगा, है ना, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट से जब आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे, तब आपको कंडला पोर्ट दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल समुद्र के किनारे। और न्यूज में भी आपने सुना कि ये गांधी धाम शहर के नजदीक है। याद रखिए, गांधी नगर नहीं, गांधी नगर तो वहां की राजधानी है जो अहमदाबाद से सटा हुआ है, ये गांधी धाम है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो आपको लोकेशन पता लग गई, ये लोकेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया कि भारत ने ईरान के साथ जो समझौता किया है, तो भारत ईरान का बंदरगाह चाबहार आपको याद होगा, चाबहार, यह वहां का बंदरगाह है। अब भारत उसे विकसित करेगा और वो भारत से जुड़ेगा। तो अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए प्री में पूछा गया कि ये जो चाबहार बंदरगाह है इसको भारत के किस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा, राइट। अब आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, राइट। अब आप देखेंगे कि देखिए ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो याद रखिए कि उसमें आपकी मदद की जाती है, ये मत समझिए कि आपको केवल फंसाया ही जाता है, फंसाया भी जाता है और आपकी मदद भी की जाती है, घड़ा बनाने वाले कुम्हार की तरह। आप कभी चाक पर जो घड़ा बनाया जाता है ना उसको देखिए, तो ऊपर से तो जो कुम्हार है वो थप 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 मारता रहेगा, लेकिन अंदर से वो हाथ का सहारा भी दिया रहता है क्योंकि मिट्टी कच्ची है, नहीं तो पता लगा उसमें छेद ही हो जाएगा। तो ऊपर से आपको लग रहा है जैसे थप थप मार रहा है लेकिन नीचे से वो सपोर्ट भी कर रहा है, तो आपको फंसाते भी हैं यूपीएससी वाले लेकिन आपको सपोर्ट भी करते हैं। इसमें सपोर्ट क्या करेंगे कि तीन ऑप्शन दे देंगे वो ईस्ट कोस्ट के, पूर्वी घाट के, और एक दे देंगे आपका कंडला का जो वेस्ट का कोस्ट पे है। अगर नक्शे की आपको जानकारी है तो एकदम से आप समझ जाएंगे कि अगर भारत में ही किसी पोर्ट की मदद लेनी होगी, लेना ही होगी, तो बट नेचुरल है कि ये कंडला नजदीक पड़ेगा, वो ईस्ट में क्यों जाएंगे घूम करके उतना आगे, श्रीलंका की तरफ से घूमो और इसके बाद फिर ईस्ट की तरफ चढ़ो, क्यों इतनी दूर में जाएंगे भाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आपको बचानी है तो आपको दूरी कम करनी पड़ेगी, तो आपको ये जनरल नॉलेज आपके दिमाग में अपने आप स्थापित हो जाएगा और दूसरों को जो ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा कि कहां से पूछ दिया गया, वही आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये तैयारी का फ्रेंड्स एक तरीका होता है। और फिर आप जब कुछ और चीजें पढ़ेंगे इन्फॉर्मेटिव तो आपको और पता लग जाएगा कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो विभाजन के बाद जो कराची एयरपोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया, तो हमको बहुत जल्दी पोर्ट की बहुत जल्दी जरूरत पड़ी, तो फिर 1950 के आसपास कंडला एयरपोर्ट को डेवलप किया गया और यह अभी भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है माल ढुलाई के मामले में। एक तथ्य आपको और भी पता लग जाएगा दोस्तों कि ये जो कंडला एयरपोर्ट है यहां सबसे पहला भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला यहीं बना था कंडला एयरपोर्ट में 1965 में, और फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी यहीं कंडला एयरपोर्ट पर बना। तो ये दो तीन चीजें आपको सामान्य रूप से जानकारी हो गई। इसके बाद जब आप मेंस पर आएंगे फ्रेंड्स तो मेंस पर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो हमारे एयर इनलैंड वाटरवेज के ऊपर जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत में कौन कौन से इस तरह के साधन हैं, तो पढ़ने को मिलेगा कि नदियां हैं हमारे यहां, नहर भी हैं हमारे यहां, बैक वाटर्स भी हैं। फिर आप ये भी जानेंगे कि 14,500 किलोमीटर हमारे यहां इस तरह के वाटरवेज हैं, जल मार्ग हैं 14,500 किलोमीटर, तो आपको पता लग गया अच्छा हम इतनी दूरी तो तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी भी चीज को सड़क मार्ग से भेजते हैं तो 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता है सड़क मार्ग से ट्रक वगैरह के जरिए, उसी को जब हम रेल से भेजते हैं, वो भी सड़क मार्ग है लेकिन रेल से भेजते हैं, तो खर्च आता है 1 रुपए प्रति किलोमीटर। और जब उसी चीज को हम स्टीमर से भेजते हैं मतलब पानी के जहाज से भेजते हैं तो खर्च आता है केवल 50 पैसे प्रति किलोमीटर। सोच करके देखिए, रेलवे से आधा और रोड ट्रांसपोर्ट से 1/3, इतने कम खर्चे में ट्रांसपोर्ट हो जाता है पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें प्रदूषण भी अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। अब जबकि हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि जो वाटरवेज है सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए है, और भारत में तो इसका हम जो हमारी क्षमता है उसका उपयोग भी हम 0.1% कर रहे हैं। अदरवाइज अमेरिका है, चाइना है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, वो तो बहुत ज्यादा अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका तो 21% अब उसकी जो क्षमता है उसका 21% सोचिए कि यूटिलाइज कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ी सी बातें पता लग गई। और भारत ने भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण बकायदे बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1986 से 30 साल हो गए ये अथॉरिटी काम भी कर रही है, और इसका यही काम है कि किस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। और अभी जो सरकार आई है वो वाटरवेज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इतनी थोड़ी सी आपने बेसिक जानकारी हासिल कर ली। अब अगर कुछ और आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता रहेगा तो आप इसी न्यूज पर अपने नॉलेज की इमारत को खड़ा करते रहिए, मेंस के लिए तैयारी हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको न तो अटपटा लगेगा और न कठिन लगेगा और न आप परेशान होंगे, बड़े आराम से कुछ न कुछ अच्छा सा उत्तर आप लिखकर आ जाएंगे। और यही जनरल स्टडीज भी है, कोई आप स्पेशल स्टडी कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, पहली जो खबर थी वो कंडला बंदरगाह के बारे में थी। डीडी न्यूज में भी आपने देखा कि एक्सपर्ट बुलाए गए थे और काफी देर तक उन एक्सपर्ट से बात की जाती रही है। फिर दूसरा और भी है फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर ने तीन बातें इंपॉर्टेंट कही थी कंडला बंदरगाह पे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समय में। एक तो बुनियादी ढांचा, दूसरा कुशलता और तीसरा पारदर्शिता। ये हमारे आर्थिक विकास के मतलब तीन मुख्य कुंजियां हैं, बुनियादी ढांचे का विकास करना, कुशलता स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जो ई गवर्नेंस के माध्यम से हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, एक और छोटी सी खबर थी वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब तीन तलाक को गलत मानते हुए कहा है कि नहीं ये गलत है और इस पर हम अब अपने तरफ से कुछ चीजें जारी करेंगे ताकि तीन तलाक की जो प्रथा है ये कम से कम हो, खत्म हो। तो देखिए जो मंथन हुआ इतना जबरदस्त, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसका अब इतना असर तो हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब थोड़ा सा नर्म पड़ा है जो इतना ज्यादा इसके पक्ष में था, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक के सामने सारी चीजें आ गई कि ये धर्म का हिस्सा है कि नहीं है, ये परंपरा है, ये शरीयत का हिस्सा है कि नहीं है। तो अब उसे भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और एक अच्छी बात है, ये हार जीत का मामला नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्सेप्टेंस का मामला है कि हमारी जरूरत क्या है। और कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाई, ये एक अच्छी बात है। तो मित्रों, न्यूज में बस इतना ही, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं कुछ क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग अपने अपने ढंग से देख लेंगे। उसमें कोई ऐसी क्लिपिंग्स नहीं है जिसको लेकर के हम विस्तार से बात कर सके, और वैसे भी अब वक्त बचा नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं अंतिम चरण ईमेल पर आता हूं। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, प्रिया पांडे ठाणे महाराष्ट्र से, राहुल इंगले औरंगाबाद महाराष्ट्र से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, शुभम वर्मा, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, और चंदन कुमार आप भी बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।